آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
اللہ کا شکر ہے، میں اس بارے میں بہت مطمئن ہوں کہ میری محنت جو پچھلے 30 سالوں سے تھی وہ کارآمد آئی اور اس کو ریکگنائز کیا گیا یونیورسٹی میں اور مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا۔ میں سوئنبرن میں نے جوائن کیا تھا 1988 میں۔ بیفور دیٹ آئی واز ٹیچنگ ان سینٹرل کوئنس لینڈ یونیورسٹی۔ اس کے پہلے میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا یونیورسٹی آف کوئنس لینڈ سے۔ تو سوئنبرن میں مجھے تقریباً 32 ایئرس ہو گئے ہیں۔ اس دوران ایک تو یونیورسٹی میں بہت چینجز آئے ہیں اور اس کے علاوہ پھر یونیورسٹی کی رینکنگ میں چینجز آئے ہیں۔ جب میں نے جوائن کیا تھا اٹ واز اونلی اے ٹیچنگ انٹینسو یونیورسٹی، ناؤ اٹ ہیز بیکم اے ورلڈ رینکڈ ریسرچ انٹینسو یونیورسٹی۔ تو یہ بہت بڑا چینج ہے اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہاں کے اسٹاف کی پرفارمنس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے اور اللہ کا شکر اس میں میں بھی شامل ہوں، کیونکہ پرفارمنس جو ہے وہ اس چیز پر منحصر کرتی ہے، ٹیچنگ پر، ریسرچ پر اور اکیڈمک لیڈرشپ پر۔ تو میرے بہت سے پڑھائے ہوئے بچے جو ہیں وہ اس وقت پروفیسرز ہیں اور انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔
اچھا، اکثر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پہ مائیگرینٹ آتے ہیں تو یا تو اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں یا پھر جب فردر اسٹڈیز کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ نے تعلیم شروعات میں تو علی گڑھ سے حاصل کی اور پھر آپ جو ہے آگے آپ نے تعلیم حاصل کی، تھوڑا سے اس سفر کے بارے میں بتائیے گا۔
جی جی، میری بیسک انجینئرنگ ڈگری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تھی اور اللہ کا شکر وہاں پر بھی میں ٹاپرس میں تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے آئی آئی ٹی دہلی میں ایڈمیشن لیا ماسٹرز کے لیے، کیونکہ میرا جو فیوچر ایم تھا اسی ٹیچنگ اور ریسرچ کیریئر میں جانے کا اکیڈمک لائن میں۔ تو آئی آئی ٹی دہلی میں نے ایک سال پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا، اس کے بعد پھر مجھے اسکالرشپ مل گیا کینیڈین یونیورسٹی سے، تو میں وہاں چلا گیا۔ وہاں سے میں نے ماسٹر آف انجینئرنگ ڈگری کی، اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، تو یونیورسٹی آف کوئنس لینڈ نے مجھے اسکالرشپ دیا تھا پی ایچ ڈی کے لیے۔ تو وہ لیٹ 70s کی بات ہے جب میں آیا تھا یونیورسٹی آف کوئنس لینڈ میں، اور یہ میرے لیے پہلا ایکسپیرئنس تھا آسٹریلیا کا۔ اس زمانے میں اوورسیز اسٹوڈینٹس بہت کم ہوا کرتے تھے، زیادہ تر اسٹوڈینٹ اسکالرشپ ہی میں آتے تھے جو میرٹ بیسس پر دیا جاتا تھا۔ تو اب تو بہت چینجز ہو گئے ہیں، اب تو بہت بڑا مارکیٹ ہو گیا ہے۔
یہ خاکہ پروفیسر صاحب کچھ خاکہ کھینچ سکتے ہیں، وہ زمانہ کیسا تھا آسٹریلیا کی 70s کی دہائی کا؟
جی جی، وہ زمانہ ایسے ہی تھا، ظاہر ہے اس زمانے میں کمپیوٹر بالکل شور ہو رہا تھا، نہ کوئی موبائل تھا نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، تو ہر چیز بس قلم سے ہوا کرتی تھی۔ اور یعنی میں نے پوری تھیسس جو ہے وہ بیسیکلی ٹائپ رائٹر پہ میری لکھی گئی ہے اس زمانے میں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ ہوا اور اس زمانے میں اسٹوڈینٹس کی تعداد جیسے میں نے کہا بہت کم تھی، تو وہ فلیور نہیں تھا جو آج کل ہے کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی اور لارج نمبر آف اسٹوڈینٹس وی کین سی ان دی یونیورسٹی۔ اس زمانے میں بہت تھوڑی تعداد کیمپس میں پائی جاتی تھی، تو اس کے باوجود بھی وہاں پر ہر طرح کی فیسلٹیز اویلیبل تھی، جس کی وجہ سے مجھے موقع ملا پی ایچ ڈی میں کامیابی حاصل کرنے کا اور فیسلٹیز وغیرہ بھی ساری پرووائڈ ہوئیں۔ تو اس کے بعد سے جب سے یہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجیز آئی ہیں، تب سے جو ہے وہ زیادہ لائف چینج ہوئی ہے کمپیئر ٹو لائف ان لیٹ 70s۔
اچھا، تعلیم یہ جو آپ نے ہے درس کا عمل کب سے شروع کیا؟ آپ جب یہ پڑھانا شروع کیا، آپ نے کہا کہ میں اکیڈیمک تو ہوں آپ نے جیسا کہ بتایا، لیکن پھر آپ نے یہاں پہ ٹیچنگ کب سے شروع کی آسٹریلیا میں، اور یہاں پہ آپ پھر پرماننٹ آپ نے سوچا کہ میں یہیں پہ رہ جاؤں؟
جی، ٹیچنگ میں نے 1981 میں جب میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر رہا تھا تو اسی وقت مجھے جاب مل گیا تھا پاپوا نیو گینی یونیورسٹی میں، جو کہ آسٹریلیا سے باہر ہے۔ تو وہاں پر میں نے 4 سال ٹیچنگ شروع کی۔ اس کے بعد پھر میں نے پہلا جاب آسٹریلیا کا مجھے یونیورسٹی آف سینٹرل کوئنس لینڈ یونیورسٹی میں ملا، وہاں پر میں 1985 میں آیا۔ تو میرا ٹیچنگ کا پہلا جاب آسٹریلیا میں 1985 میں شروع ہوا ایز اے لیکچرر۔ اس کے بعد پھر میں سوئنبرن میں 3 سال وہاں پڑھانے کے بعد سوئنبرن میں آ گیا 1988 میں، اور تب سے میں یہیں پر ہوں۔ और इसमें जो मेन जो मैं समझता हूँ जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि रिसर्च पे ज्यादा जोर दिया गया है हमारी यूनिवर्सिटीज को। मुझे मौका मिला एडवांस कोर्सेस पढ़ाने का जिसमें कैट कैम 3D प्रिंटिंग वगैरह है, और उसके अलावा भी मुझे PhD स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करने का मौका मिला जिससे पब्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो गए। फिर ARC रिसर्च ग्रांट्स ये मुझे मिली, तो ये सब डेवलपमेंट हुए हैं जो जो कि मेरा शौक भी था टीचिंग और रिसर्च का, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला।
प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइएगा। आजकल तो हम बातें करते हैं 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं, लेकिन जब आपने कहा कि 80s में जब शुरुआत की तो उस वक्त टेक्नोलॉजी, फिर 90s, थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइएगा कि ये किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो देखिए, मेरी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं थी, यानी ज्यादातर हाईली स्किल्ड लेबर यूज होते थे मशीनों को रन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज यूज हुई पार्ट्स को डिजाइन करने में और पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में, बजाय इसके कि मशीन कोई कोई इंसान उसको चलाए। अब कंप्यूटर के प्रोग्राम से मशीनें चलती हैं और उसकी वजह से ये फायदा हुआ कि एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत बहुत हाई हो जाता है। तो अब जैसे जैसे ये नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज ने इसको इसको एडॉप्ट करना शुरू किया, और इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत बढ़ा। तो अब ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, दे आर ऑल कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। और ये 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है जो अभी चंद साल पहले जो डेवलप हुई है और अब इसको इसको इंडस्ट्रीज एडॉप्ट कर रही हैं। इसमें कोई भी पार्ट कंपोनेंट जो है वो आप लेयर बाय लेयर प्रोसेस की वजह से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें काफी इसमें फायदे होते हैं, टाइम भी बचता है, टूलिंग भी बचती है, इसमें काफी एडवांटेजेस हैं। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रिवोल्यूशन आया है।
ऑस्ट्रेलिया में आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली आई है?
ऑस्ट्रेलिया में
जी, ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है?
जी, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही जल्दी इन टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन बहुत कम है, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो बहुत छोटा है। यानी जो जो चीज यहाँ प्रोड्यूस होती है उसको यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट नहीं है, तो इनको ज्यादा चीजें इम्पोर्ट करनी होती हैं। लेकिन जो चीजें ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स और इसके अलावा फूड एंड प्रोसेसिंग आइटम्स, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने काफी तरक्की की है जिसको ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इनकी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग तो ऑफ कोर्स ये मिनरल्स हैं, यानी आयरन ओर और कोल वगैरह, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड है, जिसमें फूड एंड ड्रिंक्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग एटसेट्रा।
प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं कि अब इस नए दौर में स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे आपके ख्याल में इस फील्ड में? अब क्या नई बातें हैं जो आके सीखें?
जी, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा मार्केट रहा है पिछले 20 सालों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, और ऑस्ट्रेलिया में दूसरी फैक्टर यह है कि यहाँ पर स्किल्ड माइग्रेशन होता है, यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है। तो उसी लिहाज से ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने कोर्सेज डेवलप करती हैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये बहुत बड़ी उनके लिए रेवेन्यू भी है कि यूनिवर्सिटी की इनकम भी होती है उससे और फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो स्किल्ड जो डिमांड है वो बेसिकली इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इंजीनियर्स की हमेशा यहाँ डिमांड रही है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, अकाउंटेंट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स। तो यूनिवर्सिटीज जो है इन्हीं कोर्सेज को प्रमोट भी करती हैं और इनकी क्वालिटी को मेंटेन करती हैं, और इसके लिए यूनिवर्सिटीज जो अपनी रैंकिंग पर बहुत जोर देती हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग। ऑस्ट्रेलिया में 40 यूनिवर्सिटीज हैं, 34 यूनिवर्सिटीज आर रैंक्ड अमंग टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो विच इज अ वेरी बिग बिग अचीवमेंट। सो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज आर अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रैंकिंग इट इज परस्यूइंग।
40 साल से आप पढ़ा रहे हैं, कोई कोई एक दिन बताएं कि जब आप अभी भी जब जाते हैं तो आपका एक दिन कैसे गुजरता है यूनिवर्सिटी में?
जी, मेरा जो एज ए प्रोफेसर मेरा मेन काम तो
जी
रिसर्च का होता है, टीचिंग तो बहुत कम होती है, तो मेरा ज्यादातर जो इंटरेक्शन पीएचडी स्टूडेंट से होता है। सो एंड एवरी पीएचडी स्टूडेंट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 ईयर टू कंप्लीट। तो मेरा जो इंटरेक्शन ये होता है कि पीएचडी स्टूडेंट्स को मैं बुलाता हूँ या मीटिंग उनसे होती है, उनके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस होता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर अंडर प्रेशर टू परफॉर्म, टू पब्लिश पेपर, टू राइट थीसिस एंड गेट देयर डिग्री। सो आई मेक श्योर दैट माय स्टूडेंट्स आर ऑफ हाई क्वालिटी, दे फिनिश ऑन टाइम। तो मेरा ज्यादातर जो काम है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स से मुतालिक होता है, डिस्कशंस, मीटिंग्स, लैब वर्क एटसेट्रा।
तो प्रोफेसर साहब, ये इंजीनियरिंग आजकल कौन से ममालिक के स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं? इंडिया से, चाइना से, कहाँ से?
जी, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया और चाइना बहुत बड़ा मार्केट है स्टूडेंट्स के लिए, और इंजीनियरिंग के लिए खास तौर से इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, और उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर चूंकि अंडर ग्रेजुएट डिग्री 4 साल की होती है, इसमें स्टूडेंट्स जरा कम आते हैं इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन तभी भी आते हैं। तो हमारी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की स्टेटिस्टिक बता सकता हूँ कि 75% ऑफ स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दे आर फ्रॉम ओवरसीज, मोस्टली फ्रॉम इंडिया, चाइना और रीजनल कंट्रीज। अंडर ग्रेजुएट में अराउंड 25% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ओवरसीज। सो इट इज अ बिग मार्केट, लेकिन इस साल कोविड की वजह से जरा स्लो हो गया है, बट आई होप इट विल पिक अप अगेन इन फ्यू ईयर्स टाइम।
आपको अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपकी कारकर्दगी पे, अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं?
जी, अब मुझे तो इतना अटैचमेंट हो गया है रिसर्च और टीचिंग से, तो मेरा तो अभी जाहिर है मैं एक साल
क्या
में
हम कह सकते हैं आपका
रिटायर।
फर्स्ट लव है?
जी, फर्स्ट लव इज रिसर्च। तो आई स्टिल हैव अराउंड 7 to 8 पीएचडी स्टूडेंट्स करंटली अंडर मी, सो आई वुड लाइक टू मेक श्योर दैट दे कंप्लीट देयर डिग्री ऑन टाइम। तो मेरा जो परस्यूट है वही है, रिसर्च वर्क एंड गाइड माई स्टूडेंट टू एक्सलेंस एंड प्रोड्यूस गुड रिसर्च आउटपुट।
और जो अभी आपको सारे सामाईन सुन रहे हैं, या हो सकता है कोई फ्यूचर के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हों, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, उनके लिए कहना चाहेंगे कि अगर वो एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं, रिसर्च लाइन में, तो पीएचडी जो है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन के लिए वी नीड मेरिट। Only very highly qualified student and student who have got very high marks, only they are considered. So every student should not consider to do PhD because there is not the area for everyone. Only those who want to go into teaching and research, then they should apply for PhD programs. And it is highly competitive. Particularly scholarships are very rare. But if a student is really good, outstanding, then universities they provide scholarships.
प्रोफेसर सैयद हसन मसूद साहब, SBS उर्दू से बात करने का बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।
आप SBS उर्दू के साथ हैं।